Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आज के इस 13 जनवरी के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जब उत्साह से कीर्तन होता है तो सब दुख दूर हो जाते हैं, कोई दुख नहीं बचता। जब लोग बिना संकोच कीर्तन में भाग लेते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं बचता जो हमें तकलीफ दे सके। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं और उन्होंने हमको ये कीर्तन करने का जो पद्धति है वो उन्होंने दिया है, इसको कहते हैं हरिनाम संकीर्तन। क्या बोलते हैं? संकीर्तन का अर्थ है कि दो से अधिक लोग जब एकत्र आते हैं संग में और कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, उसको संकीर्तन कहते हैं। संग में आकर किया हुआ भगवान के नाम का गुणगान, और ये प्रक्रिया जो है वो इतनी पावरफुल है कि आप कहीं भी दुनिया में इसको जांच सकते हो। जो मैं कह रहा हूँ, कहीं भी आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने झोपड़ी में, अपने बंगले में, किधर भी जाइए आप, दिन में, शाम में, ठंडे मौसम में, गर्म मौसम में, जब भी आएंगे और साथ में बैठ कर आप कीर्तन करेंगे आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। कुछ समय के लिए क्यों ना हो, आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में रहते हुए आपका मन जो है वो हमेशा तकलीफ में रहता है। कुछ ना कुछ तकलीफ कष्ट होते रहता है, होता है ना। कितने प्रकार की तकलीफ है, कितने प्रकार का टेंशन है, कितने प्रश्न हैं, कितनी समस्या है, कितने चैलेंज है लाइफ में, चुनौतियाँ हैं। तो जब तक हम लोग इस शरीर में जी रहे ना, तब तक चुनौतियाँ और कष्ट और तकलीफ कभी कम नहीं होगी। लेकिन जीना तो हमको है ना, फिर भी थोड़ी हम लोग दिन भर रोते रहेंगे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कैसे करेंगे, हमको ही क्यों हो रहा है। इस प्रकार जीने में कोई मतलब नहीं ना, आंसू ही बहाना है, क्या मतलब उस जीने में। सच्ची बात तो उसमें है कि आंसू बहाने जैसे घटना हो रही है लेकिन फिर भी मैं हंस रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। आंसू बहाने के लिए बहुत कारण है मेरे पास, मैं बोल भी सकता हूं और आंसू बहा भी सकता हूं, फिर भी आंसू न बहाते हुए मैं केवल हंस रहा हूं, ये मुमकिन है। ऐसा कुछ मैं कविता नहीं कर रहा हूं यहां पर बैठ के ये मुमकिन है, सत्य है ये। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आंसू बहाने जैसे घटनाएं हो गई तो कुछ लोग शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, कोई जाता है वेश्या के पास रात को दिल बहलाने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि आंसू बहाने वाली जो घटना है वो हमारे पिछले कर्म की वजह से हुई है, उसके वजह से हम दुख भोग रहे हैं और उस दुख को मिटाने के लिए एक और बड़ा पाप कर रहे हैं। तो क्या होगा, दुख का समाधान करने आप गए और पाप का बोझ लेकर वापस आए। ये लोगों को समझता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं शनि का काल आ गया, राहु का काल आ गया, साढ़े साती आ गई, ऐसा होता है ना। आप लोग बोलेंगे मेरी चल रही है साढ़े साती इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन साढ़े साती में अगर कोई व्यक्ति तकलीफ भोगने के बाद में शराब पिएगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, व्यभिचार करेगा तो उसकी साढ़े साती के कष्ट में और बहुत बढ़त होगी, बहुत वृद्धि होगी उसके अंदर, बढ़ जाएगी वो साढ़े साती उसकी। साढ़े साती कभी किसी का बुरा नहीं करती है। साढ़े साती या शनि काल, राहु काल में हम लोग जो पाप करते हैं ना उसका दंड मिलता है हमको। ये मत समझना कि हमारे जीवन में वो शनि काल नहीं आता है, सबके कुंडली में आता है वो, कोई फ्री नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी उसमें फ्री नहीं है, प्रधानमंत्री भी फ्री नहीं है, उसका भी जीवन में राहु काल आएगा, शनि काल आएगा, ऊपर नीचे वाला काल आते रहेगा, कभी हारेगा कभी जीतेगा। तो अंतर क्या है इसके अंदर कि शनि काल हो या राहु काल हो या कष्ट वाला काल हो या सुख वाला काल हो, वो भगवान का चरण नहीं छोड़ता है कभी वो, और अपने आप तरफ से पाप नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कष्ट हुआ तो शराब पी लेते हैं, थोड़ा कष्ट हुआ तो और कुछ कर लेते हैं, अच्छा समय आया तो फिर वापस शराब पी लेते हैं मस्ती में, जानवरों का मांस खाते हैं, फिर क्या होता है पाप में फर्क और बुद्धि हो जाती है, पाप और बढ़ जाते हैं, फिर आगे और कष्ट आएंगे। वैसे बोलते ना मेडिकल में कि हम लोग बीमार हो गए, दवाई खाया तो दवाई का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, बीमारी तो अच्छी थी लेकिन दवाई खाया और साइड इफेक्ट इतना हो गया कि वो नहीं खाया तो अच्छा होता था, ऐसा हम लोग बोलेंगे। इलाज करने गए थे, वो इलाज ही इतना कष्ट का कारण बन गया कि पहले बीमारी ठीक थी ऐसा लगेगा आपको, इलाज बहुत तकलीफ वाला काम है। हाँ खास तौर के कैंसर के मरीज ऐसे बोलते हैं कि कैंसर परवड़ला ट्रीटमेंट नको, हाँ होता है ना कीमोथेरेपी नको, क्योंकि इतना कष्ट है उस ट्रीटमेंट के अंदर, बोले इससे मर जाना अच्छा है। वो ट्रीटमेंट का इतना भयंकर कष्ट सहना है, बाल झड़ जाएंगे, सब भौंहें उड़ जाएंगी, दर्द होगा इतना, तकलीफ खाने में चक्कर आएगा। तो हमारा जीवन में हमको देखना है कि सबके जीवन में दुख के समय आते हैं, लेकिन कुछ लोग रोते हैं कुछ लोग हंसते हैं, का कारण क्या है? इसका कारण है भगवान की भक्ति। जो भगवान के चरण में शरण लिया है उसके जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन वो कष्टों को सह सकता है और भी हंस सकता है। और जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं उनको कष्ट सहे नहीं जाते, इसलिए वो गलत काम करने में आदि हो जाते हैं। और ये संकीर्तन जो है वो भगवान ने हमको इसीलिए दिया है। ऐसी दुनिया में कोई योजना नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, प्रोसीजर नहीं है जो करने से आपका 100% दुख मिट जाएगा। लेकिन संकीर्तन आप कभी भी करो, दिन में करो, शाम को करो, ठंडी में करो, गर्मी में करो, जब भी आप करेंगे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर उदास भी रहेंगे आप, सुन्न भी रहेंगे, थक गए होंगे, फिर भी कीर्तन करने से आपको बड़ा आनंद आएगा। तुरंत कोई करता होगा तो देख के भी आपके मन में तुरंत ऐसी मुस्कान आएगी, है ना? मैं देखता हूँ ना यहाँ बैठ के, आप लोग तो नाचते रहते हो, मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ जो लेट में ऐसे आता ना गेट से, ऐसे हंसते हुए अंदर आते, ऐसे आ रहे हैं हंसते हुए अंदर आते एकदम, देख के कि आप नाच रहे हो, है ना? क्योंकि खुशी देखने से भी खुशी होती है और दुख जो है वो देखने से भी दुख होता है। तुम जब जा रहे हो वो देखते हैं अचानक किसी घर में, कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई घर है, इसमें डेथ हो रहा है, सब रो रहे हैं, तो आप वहां से गुजरेंगे तो आपको भी रोना आएगा, आएगा ना? खास करके औरतों को आता है ना, तो कोई भी हो, वो अपना हो या पराया हो, अगर कोई चार पांच लोग मिलकर रो रहे हैं तो आपको भी रोना आएगा तुरंत। और चार पांच मिलकर लोग हंसी मजाक आनंद ले रहे हैं तो आपको भी उनको देख के आनंद होगा, ऐसा ही है। इसलिए हमेशा हमें इस पवित्र वातावरण में रहना चाहिए, जिससे कि पवित्र वातावरण में होने से क्या होगा, आपका जो दुख है वो कम होते रहेगा। मैं आपको सुंदर कहानी बताता हूँ। जब कंस के अखाड़े में भगवान कृष्ण आए ना, सब बड़ा अखाड़ा था, बहुत बड़ा मैदान, ऊपर कंस बैठा था, सब मथुरा के लोग ऐसे बैठे थे, एक तरफ स्त्रियां बैठी थी, एक तरफ पुरुष बैठे थे, एक तरफ मेहमान आके बैठे थे, नंद महाराज भी आए थे वसुदेव के घर में, नंदगांव से मथुरा आए थे वो भी एक जगह बैठे थे, ग्वाल बाल बैठे थे, गोपियां बैठी थी, कुछ लोग वहां बैठे थे। और कृष्ण बलराम आते हैं, उनके ऊपर एक हाथी को छोड़ देते हैं, बड़े हाथी को। तो क्या होता है, इतना बड़ा हाथी पहाड़ जैसा, कृष्ण भगवान उसको मार देते हैं, उसका दांत तोड़ के ऐसा कंधे में पकड़ के अंदर प्रवेश करते हैं अखाड़े में। तो दो पहाड़ जैसे राक्षस मल्ल युद्ध करने के लिए आते हैं वहां पर। एक्चुअली वो पांच रहते हैं, हाँ, चाणूर, मुष्टिक, शल, कूट और तोशल, पांच राक्षस से पहाड़ जैसे शरीर के उनके, और उनके दोनों के सामने दोनों के सामने या पांच जन, तो दो पहले सामने आते हैं। तो इतने से कृष्ण बलराम बालक छोटे छोटे से, और इतने पहाड़ जैसे योद्धा उनके साथ भी मल्ल युद्ध खेलने वाले हैं। भाई आपको क्या लगेगा, आप कहानी सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है आपको, समझो आपका बालक उसके अंदर है, कृष्णा और बलराम आपके बालक है, और उनके सामने दो ऐसे मल्ल आ गए, हाँ कुश्ती खेलने वाले, तो आपको बोला अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना बड़े बड़े आदमी को इतने बच्चों के साथ खेलने को लगा रहे हो, अरे वो मर जाएंगे, इतने बच्चे एक हाथ गिरेगा तो भी मर जाएंगे, इतने कोमल है उनके हाथ और पांव, और इतने बड़े राक्षसों को आपने लगा दिया उसके भी, उनको लगा दिया उसके ऊपर, कैसे दुष्ट हो आप लोग, ये बराबर नहीं है, तो खेल खेल में भी अच्छा नहीं है, खेल खेल में भी इक्वल इक्वल खेलते हैं, ये तो कुश्ती खेलने का अखाड़ा है, उसके अंदर इतना बड़ा पहाड़ जैसा योद्धा, इतने छोटे से बच्चे, ये सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसे कौन बोल रहे हैं? आप जैसी स्त्रियां बोल रही हैं वहां बैठी हुई, उनको लग रहा है अरे हमारे बालक जैसे, वो छोटे से कोमल कोमल बालक जैसे हैं। बाद में बोलते हैं हमारा राजा कंस जो है बड़ा दुष्ट है, यहां पाप कर रहा है, इन कोमल बच्चों के सामने इसे भड़ंग भयंकर राक्षसों को छेड़ रहा है, उनके ऊपर छोड़ रहा है, यहां पाप हो रहा है, और हम लोग यहां बैठकर देखते रहेंगे तो वो पाप हमको भी लगेगा। क्यों क्यों लगेगा? जब पाप होता है और आप देखते रहते हो अच्छी तरह से उसका, हाँ अच्छा हो गया, ठीक हो गया, चोरी हो गई, घर फोड़ी हो गई, हाँ कोई आतंकवादी ने बॉम्ब फोड़ा, हम देखते रह गए, अच्छा पिक्चर चल रहा है, हाँ तो वो देखने से भी आपको पाप लगता है, या तो आप पाप को रोको या तो चले जाओ वहां से, लेकिन आप देखते रह जाओगे तो आपको भी वो पाप लगता है। ध्यान में रखना आगे जाके भी, लड़की रास्ते पर किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा है और आप खाली देख रहे हो और जा रहे हो निकल के, तो वो आग पर जाके उसको रक्षा नहीं किया आपने, तो आपको भी पाप लगेगा, ध्यान रखना। ऐसा दुनिया है ये, हाँ ये कर्म का हिसाब ऐसा होता है। तो वो कहती हैं सब स्त्रियां मिलकर कि हमारे राजा बड़े दुष्ट हैं, उन्होंने बड़ी दुष्टता के साथ इन बालकों के ऊपर इतने पहाड़ जैसे राक्षसों को भेजा है, तो हम चले जाएंगे यहां से, भी हम लोग रुकेंगे नहीं यहां पर, क्योंकि ये सब पाप होगा, ये बालकों को मारेंगे तो वो देखने से हमको पाप लगेगा। इसका मतलब क्या है? वो लड़कियां स्त्रियां पाप नहीं कर रही है, वो तो अखाड़े में बैठी है प्रेक्षक के रूप में, लेकिन जो अखाड़े में हो रहा है उससे वो चिंतित है कि यहां पर अगर पाप होगा तो उसका परिणाम हम पर भी होगा। उसी तरह से अगर कोई पुण्य कार्य होता है और आप वहां रहते हो तो वो पुण्य कार्य का फल भी आपको मिलता है। जैसे हमने हॉस्पिटल में परसों यज्ञ किया, कितने लोग थे आप लोग वहां पर बैठे हुए? कोई भी नहीं देखने को आया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप सोचो इस बात को, वो यज्ञ आपके लिए किया गया था, आपके कल्याण के लिए किया गया था, आपको आशीर्वाद प्राप्त हो इसलिए किया गया था, और आप उसको देखने को भी नहीं आए दो मिनट के लिए। तो जब पुण्य कार्य होता है और आप अगर देखने के लिए भी आते हो तो भी आपको पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो पुण्य कार्य है, वो हरकत नहीं, 10 मिनट एवं जायसा पाया पड़ून। हाँ बोलने का मतलब क्या है कि ये पुण्य कार्य जब होता है तब आपने नहीं किया होगा उसको, लेकिन आप जब देखते भी हो उसको तो आपको उसको लाभ मिलता है। संकीर्तन अगर लोग कर रहे हैं, कोई नाच रहे हैं और आप दूर से भी खड़े हो तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। उसी तरह से जिस जगह पर कोई पाप नहीं होता है, जो जगह बहुत पवित्र है, जो जगह बहुत शुद्ध है, उसमें अगर आप रहते हो तो अनजाने में आपको भी उस शुद्धि पवित्रता का लाभ मिलता है। आपने चाहे कुछ बड़ा काम नहीं किया हो उसको पवित्र बनाने के लिए, कोई किसी ने किया होगा, लेकिन उसमें आप काम करते हो तो आपको उसका लाभ मिलेगा। समझो अभी ये सब खिड़कियां बंद कर दिया गया, हाँ, और सब लोग सिगरेट फूंकने लगे यहां पर, आधे लोग सिगरेट पी रहे हैं, आधे लोग खड़े हैं, तो जो आधे लोग सिगरेट नहीं पी रहे हैं उनको कष्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा, वो तो नहीं पी रहे, धुआं तो है ना, उसी वातावरण में आप खड़े हो ना, तो जो पी रहे हैं उनको भी नुकसान होगा और जो नहीं पी रहे हैं उनको भी होगा। समझो ये कमरा बंद हो गया, एकदम बंद कर दिया, खिड़की उड़की सब बंद कर दिया, और 10 लोग एकदम बढ़िया अत्तर लगा के कमरे में आए, तो केवल जिन्होंने अत्तर लगाया उनको खुशबू आएगी कि सबको आएगी? हाँ क्यों सबको आएगी? क्योंकि वो फैल रही है, केवल यहाँ पर रखी है, यहाँ पर नहीं है, अगर तो वो बोतल भी रखी है जेब में तो भी सबको उसको खुशबू आएगी। समझो मैंने वो बोतल मेरे जेब में रखी है, थोड़ा खुला कॉटन भी रखा है उसके ऊपर, और आपसे आके मैं झगड़ा किया जोर जोर से किसी बात पर, फिर भी झगड़ा करते समय आपको वो खुशबू आते रहेगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। ये पुण्य कार्य ऐसा ही होता है और भगवान का सेवा भी ऐसा ही होता है। आपको पता नहीं चल रहा है, वो तो मुझे गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है मुझसे, खुशबू कहाँ से आ रही है ऐसा आप प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वो झगड़ा भी करेगा आपसे या आपको गले लगाएगा, दोनों तरफ आपको वो खुशबू आती रहेगी। अभी आपको समझ में आया? उसी तरह से भक्तिविदान्त अस्पताल में इतना पवित्र वातावरण बना के रखा है, शुद्ध वातावरण बना के रखा है, शुभ वातावरण, पुण्य का वातावरण बना के रखा है, शायद आप में से किसी ने उसको मदद नहीं किया होगा करने के लिए, किसी और ने उसको बनाया होगा, लेकिन जब तक आप उसमें काम कर रहे हो आपको ऑटोमेटिकली उसमें काम करने का मौका मिल रहा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वो दिन मैं देख रहा था, परसों, परसों है ना एनुअल डे अपना हो गया, सोम इतवार के दिन, शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो मैं ये कंस का उदाहरण पहले पूरा करता हूं। हाँ, तो ये उदाहरण से मैं समझ गया कि अगर पाप वाली जगह में आप देखते रहोगे तो आपको पाप लगेगा, लेकिन पुण्य वाली जगह पे आप देखते रहोगे तो आपको पुण्य भी लगेगा। ये इसका मीनिंग है, समझदारी की बात यह है। जब पुण्य होता रहेगा और आप उसको देखते रहेंगे तो आपको भी पुण्य लगेगा। जैसे जब कोई हवन हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, तो लोग क्या करते हैं, अरे कमी कमी 5 मिनट अपन कहा हो ना पाओ पाया पड़ून जाऊ नहीं हुए अपन, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो मैंने 2 घंटा नहीं दिया उधर, लेकिन 5 मिनट में जाके कम से कम तिलक लगा के आ जाऊंगा मैं, मेरे को प्रसाद मिलेगा, तीर्थ मिलेगा उसका। लेकिन फिर भी आप चिंता मत करना, मैंने वहां पर खड़े होकर 10 मिनट तक आप सबके लिए नाम लेके प्रार्थना किया है। मैं उनको बोला भी कि कितने लोग यहाँ पर नहीं होंगे, कितने लोग ICU में होंगे, कितने लोग अभी ड्यूटी पर नहीं होंगे, कितने लोग यहाँ पर नहीं आए होंगे मैदान में, वो सबके लिए प्रार्थना करना। ऐसे 5-6 प्रार्थना मैंने सबके द्वारा आपके लिए किया, तो आपको फिर भी उसका लाभ मिलेगा। आप नहीं आए फिर भी मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा क्योंकि आप उसी परिवार से हो जिस परिवार की तरफ से वो हवन किया गया था, उससे आप जुड़े हुए हो, इसलिए आपको लाभ मिलेगा उसका। इसलिए पवित्र जगह पर जुड़ जाना बहुत भाग्य की बात है। हमने उस पवित्रता को बनाने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया होगा, लेकिन हमने उसमें सहभाग दिया होगा, हमको उसका लाभ मिलेगा। और अगर हमने कुछ सहभाग देने का सोचा और सहभाग दिया उसमें, तो हमारी तरफ से कुछ हमने और उसमें दिया, योगदान दिया उसको शुद्ध करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, उसको गलती होने से रोकने के लिए आपने सहयोग दिया, तो भी आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा उसके अंदर। आपके जीवन का दुख जो है वो नष्ट हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद आएगा, पवित्रता आएगी। हाँ, और राहु काल शनि काल आपको टच नहीं कर पाएगा अगर आप भगवान के चरणों में जुड़े हुए तो, क्योंकि शनि राहु जो है वो भगवान से बड़े हैं क्या बताओ आप, और देवता भी उससे बड़े हैं, देवताओं के नीचे आते हैं ग्रह लोग, उनका पावर जो है वो देवताओं के नीचे है। तो ये ग्रहों के ऊपर देवता लोग हैं, देवताओं के ऊपर ब्रह्मा है, ब्रह्मा के ऊपर श्री कृष्ण है। तो आपके जीवन में अगर समझो शनि काल चलता होगा और आप भगवान का सहारा ले चुके हो, तो शनि आप पर क्या असर करेगा। मेरे एक मित्र को मैं परसों मिला दिल्ली में, वो मुझे बोल रहा था कि मेरे कुंडली देखी गई उसकी, बोलता है 20 साल से मेरे को कष्ट हो रहा है, वो 2019 साल तक कष्ट चलेगा मेरे जीवन में। अरे लगातार बच्चे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, नया बच्चा वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, वो भी ICU में भर्ती है, PICU में, हाँ जितने बच्चे हुए लगातार वो सब लोग पहले 2 साल में हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे, ठंड का मौसम आया तो हॉस्पिटल भर्ती हो गए, जिनका एक्सीडेंट हो गया, पीठ का दर्द है, हाँ जवान आदमी पीठ दर्द से हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसके ऑपरेशन हो रहे हैं पीठ के, तो उसको लगा क्या हो क्या रहा है इतना लगातार इतने साल तक चल रहा है। तो कुंडली देखा, बोलते राहु का खराब काल चल रहा है, महादशा, और वो कब तक चलेगी, 2019 तक, 99 में शुरू हुई है, अभी भी चल रही है और 5 साल और लगेंगे उसको। लेकिन वो कुंडली वाले ने बोला कि ये काल इतना भयंकर है आपके जीवन में कि आप शायद नशा करते, व्यभिचार करते, कुछ गलत पाप करते, इतना भयंकर काल है ये, लेकिन चूंकि तुमने भगवान का शरण लिया है तुम्हारे जीवन में अभी भी अच्छा चल रहा है सब कुछ, इतना भयंकर नुकसान, टूटने गए आप, उध्वस्त नहीं हुए, खुद बोल रहा है। क्योंकि वो जानते हैं, मैं हम देखते हैं जब इस काल में लोग रहते हैं तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, इतना त्रस्त होते, दिमाग इतना खराब होता है उनका, सह नहीं सकते इतना कष्ट, वो तो कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठते हैं, फिर और दुख भोगते हैं उसकी वजह से। तो राहु जो है वो पूरा अपना फिर बल दिखाता है, चलो आ जाओ तुम मेरे चंगुल में आ गए, लो दंड दूंगा आपको मैं, करो पाप करो और मैं तुमको लात मारूंगा। लेकिन जो राहु काल शनि काल होते हुए भी भगवान के शरण में रहता है, उसको राहु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है उसका, है ना। समझे, आपका कोई सुपरवाइजर है और वो आपको तकलीफ दे रहा है, हर रोज आपको कुछ ना कुछ पीड़ा देता है, लेकिन आपका डायरेक्टर से एकदम अच्छा फ्रेंडशिप है, आपने कई साल पहले घर में उसका कुछ काम किया होगा, तो उसको पता चलेगा कि अरे ये तो डायरेक्टर का खास आदमी है, तो डरेगा ना आपको कष्ट देने के लिए आगे जाके, है ना। मतलब आपके ऊपर जो आपको कष्ट देने वाला है उसके ऊपर के आदमी का आपका संपर्क होगा, तो आपको कष्ट देने वाला आदमी जो है वो समझ बूझ के शांत हो जाएगा, बोला इसको नहीं हाथ लगाना है, बाकी किसी को भी हाथ लगाओ इसको मत लगाओ, इसका तो ऊपर तक कॉन्टैक्ट है। ऐसा होता है कि नहीं? एक पतला सा आदमी आपका पड़ोस में रहता होगा, एक झपड़ मारे तो गिर जाएगा नीचे, लेकिन अगर दाऊद के साथ में उसका सब कॉन्टैक्ट होगा तो दाऊद इब्राहिम का संपर्क है उसके साथ, तो उसको आप छापड़ तो छोड़ दो, गलत बात भी नहीं करोगे उसके साथ में, इतना सा 4 फुट के आदमी होगा तो भी, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट जो है ना वो बड़े आदमी से होता है, पावरफुल आदमी से होता है। वैसे जिसने कृष्ण का सहारा लिया है उसको ये तारे और ग्रह क्या मारेंगे, कौन से देवता मारेगी उसको, कुछ नहीं कर सकते उसको, क्योंकि तो देखेंगे ये मालिक का आदमी है, हमारा कुछ चाहे चलेगा इधर अपना, कुछ चलेगा नहीं यहाँ पर। तो उसी तरह से इस अस्पताल में रहते हुए आपको ये सीखना है कि आपका सबके जीवन में कष्ट आएगा, हमारे जीवन में भी कष्ट आएगा, अभी भी है और आता रहेगा, पीछे भी था आज भी है, सबके हमारे में भी आपके में भी है, लेकिन फिर भी इतना आनंद जीवन में क्यों है, क्योंकि उस परम आनंदी भगवान का सहारा लिया है। इसलिए आजू बाजू में कष्ट हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी खुशियां क्यों है जीवन में, क्योंकि भगवान का सहारा लिया है। और भक्ति वेदांत का ये जो स्थिति है, ये वातावरण जो है उसी का परिणाम है। ये मत समझना कि अस्पताल में संकट नहीं आते, प्रॉब्लम नहीं आते, चलते रहते हैं प्रॉब्लम, बड़े संकट भी पीछे आए हुए हैं, कैसे उससे निकल गए हम लोग सब लोग, क्योंकि तब भी भगवान का सहारा था जब संकट नहीं था, जब संकट आया है ना, आया कि नहीं, हाँ सलोमणी हॉस्पिटल बंद हो गया, कितना लफड़े हो गए इधर, लेकिन कैसे निकल गए उसमें से, क्योंकि उसके बीच में भगवान का ही सहारा था, उन्होंने वो संकट के सामने खड़ा किया, उन्होंने संकट से हमको निकाल दिया और फिर अस्पताल का और प्रगति हो गया। मैं देख रहा था 17वीं वर्षगांठ हमारी पूरी हुई 11 जनवरी को, 17 साल पूरे हो गए, आप में से सब लोग 17 साल के नहीं होंगे यहाँ पर, कुछ कुछ लोग होंगे, लेकिन क्या देखा हमने, तीन तीन संत आए हुए हैं उसके अंदर, तीन तीन संत, एक नहीं तीन तीन संत, एक राधानाथ स्वामी महाराज, एक गिरिराज स्वामी महाराज और एक भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, और तीन तीन संतों का सबको संग मिल रहा है, सबको दर्शन मिल रहा है, उनका उपदेश सुनने को मिल रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, कितनी अद्भुत बात है। दुनिया में कौन सा ऐसा अस्पताल है आप जाके ढूंढ के निकालो जहाँ पर उनके वार्षिक समारोह के ऊपर संत लोग आते हैं, एक नहीं तीन तीन लोग आते हैं, और वो श्रीमद् भागवत की जो घटना है उसके ऊपर नाटिका देख रहे हैं, कृष्ण के ऊपर नृत्य हो रहा है, हाँ हरिनाम का संकीर्तन गायन हो रहा है, संत लोग उपदेश कर रहे हैं भगवद गीता से। और आपको ये पता नहीं होगा कि आप लोग कितने भाग्यवान हो। मैं मेरे गुरुजी के साथ में एक बार वृंदावन में एक बड़े संत को मिलने गया था, बहुत बड़े संत हैं वो, जिनके पास हमारे गुरुजी भी रहे हैं जब वो छोटे से उम्र के थे। तो जब वो संत को हम मिले तब वो बैठे हुए थे झोपड़ी में अपने, हम लोग जब मिलने गए तो उन संत ने कहा कि आज मेरा दिन जो है वो बड़ा पवित्र हो गया है, क्योंकि आज मुझे भक्त का दर्शन हो गया है, इसलिए मेरा आज का दिन जो है वो धन्य हो गया है। ऐसे वो संत कह रहे हैं जिनके साथ में हमारे गुरुजी रहे थे पहले जब छोटी अवस्था में थे, लेकिन वो बड़े संत भी क्या बोल रहे हैं कि भक्त का दर्शन होना ये जीवन में बड़ी भाग्य की बात है। और जिन्होंने उन्होंने और आगे कहा कि जिन्होंने अपने जीवन में इस जीवन में या पहले जीवन में अच्छे अच्छे पुण्य कार्य किए होंगे उसी को संत का दर्शन होता है, उसी को भक्त का दर्शन होता है, आम आदमी को बाय चांस लक बाय चांस दर्शन नहीं होता है। आपके पड़ोस में भी कोई लोग होंगे और आपके घर में संत आते होंगे तो आपके बहाने उनको दर्शन होता होगा, ये भी उनके पुण्य का लक्षण है, क्योंकि वो पुण्य किया होगा उन्होंने, इसलिए उनको दर्शन भी हो रहा है, उनको आंखों के सामने वो व्यक्ति भी आ रहा है, ये उसका भाग्य है। तभी आप सोचो 1500 से 1800 आदमी लोग बैठे हुए हैं और तीन संतों का एक साथ दर्शन हो रहा है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब भाग्यशाली हैं, इन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कार्य किया है, इसलिए इस जीवन में उनको संत का दर्शन हो रहा है। उसको देखने को मिलना मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ लोग उठ के चले गए भोजन करने के लिए, कुछ लोग बैठे और उनका सुना उपदेश, क्या बोल रहे हैं वो, तो वो और भाग्यशाली लोग हैं वो। कुछ लोग भाग्य होते हुए भी एब्सेंट रह गए उस दिन, उनका चांस तो था, कूपन तो था उनके पास, एंट्री था उनके पास, लेकिन नहीं दर्शन हुआ उनका, मिस हो गया उनका। ये सब भाग्य की बातें हैं। तो मैं सोचता हूँ, मैं तो अभी अस्पताल के शुरू से हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि आप लोग कितने भाग्यवान हों। अरे हो सकता है आप लोग हाउसकीपिंग में आए होंगे या तो नर्सिंग के रूप में आए होंगे और कुछ काम करने के लिए टेम्पररी परमानेंट जो भी कुछ हिसाब किताब है आए होंगे, लेकिन यहाँ पर आए हो इसका मतलब आपने जरूर कोई पुण्य किया है, नहीं तो आपको भगवान का नाम सुनने को नहीं मिलता, भगवान का प्रसाद नहीं खाने को मिलता, भगवान के भक्त का दर्शन नहीं होता, पवित्र वातावरण में जहाँ पर पाप नहीं होता, जहाँ पर मांस नहीं आता, व्यभिचार नहीं होता, जुआ नहीं आता, शराब नहीं पी जाती, नशा नहीं करते लोग यहाँ पर, ऐसी जगह आप लोग काम करने को आ रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। नहीं तो दुनिया में कितने लोगों का भाग्य है जहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अरे जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर सब सब गलत काम लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो करोड़ों रुपये का बिजनेस करते हैं वो भी शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, स्टाफ लोग सेक्स करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक कंपनी वाले काम करने वाले वहीं पर उनका होता है कनेक्शन, वहीं पर बिल्डिंग में छुप छुप के सेक्स करते हैं, सब होता है, मैंने जानता हूं मैं। आपके संस्था में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये पवित्रता जो है ये प्राप्त होना भी भाग्य की बात है, आपने ऐसे कर्म किए कि भगवान ने आपको यहीं पर नौकरी दिया है, यही नौकरी आप और कई जगह करेंगे उतना ही पगार मिलेगा, लेकिन वहां पर सब पापों के वातावरण के साथ में आपको करना होगा और वो पाप जो आप नहीं कर रहे हो वो भी आपको लगेगा। कैसे, समझो आप एबॉर्शन के दवाखाने में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में जहाँ पर औरतें आकर बच्चा गिरा देती है, और आप वहाँ झाड़ू लगा रहे, खाली जमीन साफ कर रहे हैं, वो कोई लड़की वहाँ पर बैठ के एंट्री कर रही है रिसेप्शन में, क्या नाम है, क्या एज है, कौन से घर से है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो खुद ने एबॉर्शन कर रही है, कुछ नहीं कर रही है वो फ्रंट में बैठी हुई है और आप में से कोई लोग वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग वो संस्था में काम कर रहे हैं जहाँ पर ये जघन्य पाप हो रहा है, उसी के सिलसिले में आप वहाँ पर सेवा दे रहे हो, उसी का जगह साफ कर रहे हो, उसी के पेशेंट का एंट्री कर रहे हो, तो आपको भी वही पाप लगेगा जो डॉक्टर अंदर कर रहा है, क्योंकि आप उसी बड़े पाप की संस्था में अपना सेवा दे रहे हो। आप ड्राइविंग कर रहे हो हाँ, और 1000 मुर्गी को लेके जा रहे हैं काटने के लिए, आपको क्या पता है, आप तो ड्राइविंग कर रहे हो, आपका जॉब है, लेकिन अगर आप उस कत्तल खाने की ट्रक में ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको उसका पाप लगेगा। आपने एक मुर्गी को भी हाथ लगाया नहीं है ना, आप काटेंगे उसको, लेकिन उस कार्य में आपने सहायता किया है तो उसको आपका भी उसमें सहभाग होगा और आपका भी पाप लगेगा। तो जैसा ये सत्य है कि आप कुछ भी ना करते हुए गलत संस्था में काम कर रहे हो इसलिए आपको उसका भी नुकसान हो रहा है, वैसे आप अच्छी संस्था में काम कर रहे हो और आप शायद कुछ करते नहीं होंगे फिर भी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए आजकल के लोग ना पगार देखते हैं कितनी है, लेकिन पगार से भी ऊपर संस्था कैसी है वो भी देखते हैं। कुछ चीटिंग का बिजनेस तो नहीं करते ना लोग, कुछ स्मगलिंग तो नहीं करते ना, कुछ लोगों को चीट तो नहीं कर रहे हैं, फंसा तो नहीं रहे हैं, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं गलती से चीटिंग करके हुए, लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि वो जो संस्था लोगों को फंसा कर चीटिंग करके जो धन कमाती है उसमें से आपको पगार मिलता है, उसका अन्न आप खाते हो तो आपको वो भी पाप लगने वाला है, क्योंकि आपका धन जो है वो भी पाप की जगह से आ रहा है, और अगर आपका धन जो है वो पुण्य की जगह से आ रहा है तो वो भी पुण्य का पैसे का जो भोजन आप कर रहे हो उसका पुण्य आपको लगेगा, है ना, लगेगा ना। स्विमिंग करने गए और स्विमिंग पूल बहुत गंदा था वो दिन, तो आके गला खराब होगा ना आपको, बुखार तो आएगा ना रात को, और दूसरा आदमी उस रुचि का फिर स्विमिंग करने गया तालाब में, एकदम स्वच्छ तालाब था तो एकदम फ्रेश होके बाहर आएंगे आप, समझ में आया ना आपको, गंदा तो आपने नहीं किया है तालाब में जाके, लेकिन तालाब में आपका संपर्क आ गया तो आपको वो रोग लगेगा। उसी तरह से जब आप भक्त के संग में आएंगे तो भक्ति का रोग भी लगेगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे जीवन में। वो हमारे परम पूज्य गिरिराज महाराज वही बता रहे थे, कि जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो उसने हाथ से बराबर धोए नहीं है, और ऑपरेशन किया तो क्या होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। हम लोग स्वैब लेके टेस्ट भेजते हैं कि कितना गंदगी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, आईसीयू में कितना गंदगी है, वो क्या कार्टून कॉटन में देके लेबोरेटरी भेजते हैं, और लेबोरेटरी में उसका रिपोर्ट आता है कि इतना इतना जंतु है इसके अंदर। तो अगर डॉक्टर साहब या नर्स लोग अगर साथ साफ नहीं किया हुआ है और वातावरण में फ्यूमिगेशन नहीं किया हुआ है तो मरीज को इन्फेक्शन होगा। उसी तरह से अगर मरीज एक भक्त डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका भक्ति का इन्फेक्शन भी उसको होगा। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है हाँ, और जेब में बहुत एक इत्र का कॉटन रखा है, वो हरे रंग के ड्रेस के अंदर स्टरलाइज है ना, स्टरलाइज ड्रेस होता है ना, हरे रंग का लहंगा पैजामा, उसके अंदर एक अत्तर का एक गोला रखा है जेब में, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बड़ा सुपरा मेजर का ऑपरेशन कर रहा है, तो उसके अंदर जो खुशबू है उसका सबको लाभ होगा ना कि नहीं होगा। सब लोग कहाँ से अत्र का वास आ रहा है, किसने लगाया है, तो सब लोग एक दूसरे पूछ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। डॉक्टर बहुत शांत से ऑपरेशन कर रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन उसी के जेब में है वो, सबको खुशबू मिल रही है उसकी। भक्ति भी ऐसी होती है, हृदय के अंदर होती है, छुपी हुई होती है, लेकिन वो छुपती नहीं है। जो भक्त आदमी आपके संपर्क में आएगा उसका भक्ति और उसका आनंद आपको इन्फेक्ट करेगा, उसका असर आप पर होगा। हमारे गुरु जी कहते हैं कि अगर आप खुश हैं तो आपके साथ जो भी रहेगा वो भी खुश हो जाएगा, और आपके साथ में कोई बहुत दुखी आदमी आ गया तो आप कितने भी खुश होंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। होता है ना ऐसे, कोई घर से बहुत परेशान होकर आज पे ड्यूटी पर आया है, वो कुछ बोल ले रहा है, शांत करके गुपचुप काम कर रहा है, लेकिन उसके पास जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ टेंशन है यहाँ पर, टेंशन होता है ना ऐसे। और कोई खुश होकर आया आदमी काम पर तो उसके कॉन्टेक्ट में आप आ गए तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत आनंद लगेगा। तुम्हारे गुरु जी कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू मेक समबडी हैप्पी यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट। किसी दूसरे को आपको खुश करना है तो पहले आपको खुद को खुश होना पड़ेगा। खुद दुखी रह के दूसरों को हम खुश नहीं कर सकते हैं। आप मन में बहुत दुखी हैं और आप स्टेज में एक प्रोग्राम दे रहे हैं, जोक बता के लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन आपका दिल अगर बहुत दुखी होगा तो आपके सामने बैठा हुआ जो प्रेक्षक वर्ग है उनको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके दर्द के सहारे में आप जोक बोल रहे हो। अंदर खुशी और आनंद होगा तो ही आपके बोलने में और चलने में और चेहरे पे दिखाई पड़ेगा, और बाकी लोगों को उसका लाभ या नुकसान होगा। इसलिए मकर संक्रांति आ रही है, हाँ क्या बोलते हैं, तिलगुड़ घ्या आणि गोडगोड़ बोला, क्योंकि लोग गोडगोड़ नहीं बोलते हैं इसलिए उनको बोलना पड़ता है, बोलो बोलो बोलो, लेकिन जो रोज गोड़ बोलते हैं उनको बोलना नहीं पड़ता है, सर गोड़ बोलो, हाँ बोलना पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। जो रोज बोल रहे हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो रोज नहीं बोलते हैं उनको बोलना पड़ता है, अभी तो बोलो संक्रांति है बोलो, कम से कम आज तो बोलो, ये लो मीठा खाओ लेकिन गुड़ बोलो मीठा मीठा बोलो। तो ऐसा है सब, हम सबका भाग्य है बहुत। कभी कभी होता है कि बहुत हो गया, अभी कोई नई जगह नौकरी ढूंढना चाहिए, बहुत अभी पगार कम हो गया है, ज़्यादा जरूरत घर पर है, अभी मुझे नई जगह अप्लाई करना पड़ेगा। वो दिन डॉक्टर संकेत बता रहे थे प्रवचन में अपने, एक नर्स थी यहाँ पर, उसका नाम मुझे याद नहीं है, 7 दिन यहाँ से काम छोड़ के गई और काम ले लिया, 7वें दिन लौट के आई, बोलते नहीं कर सकते वहाँ पर, बोले भक्ति विधान में इतने अच्छे वातावरण में काम करके आदत लग गई है अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने की, अभी वो गाली बकने वाले लोगों के बीच में काम करने को नहीं जमता है, नहीं चाहिए बड़ा पगार, ठीक है जो भी है यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि पगार सब कुछ नहीं होता है, आसपास के लोग कैसे वो इम्पोर्टेंट होता है। बड़े बड़े अस्पताल में माँ बहन की गाली देते हैं बड़े बड़े अफसर लोग, और काम करवा लेते हैं लात मार कर, और लोग क्या है मजबूर होकर बड़ी तनख्वाह इसलिए वो सहन लेते हैं, सहन कर लेते हैं उसको और काम करते हैं, बाद में कहते हैं अब बहुत हो गया अभी मेरे को नहीं चाहिए बड़ी पगार, मैं जाऊँगा उधर और कम पगार में काम करूँगा लेकिन नहीं जाऊँगा उधर। ऐसा है सब, लोग क्या बोलते हैं घर के पास है अच्छे लोग हैं तनख्वाह थोड़ी कम है लेकिन अच्छा है काम सब वहाँ पर, तो लोग बड़ी पगार छोड़कर वहीं लग जाते हैं। चर्च गेट में है ट्रेन से जाना पड़ता है पगार बहुत है लेकिन इतने सारे गाली देते हैं कुछ आने का समय नहीं जाने का समय नहीं 11:30 तक छोड़ते नहीं हैं तो बोलते नहीं चाहिए बड़ी पगार भी, आई डोंट वॉन्ट, आधी रोटी खाएंगे लेकिन शांति से रहेंगे, जरूरी ना मन की शांति। कितना घंटा लोगों की गाली सहेंगे हम लोग, कितना घंटा काम करेंगे, उसका भी कोई लिमिट है ना। तो संस्कृति जो है, संस्कृति मतलब कल्चर जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास जो कल्चर बना के रखा गया है वो भी हमारे जीवन में बहुत सहायता करता है, हमको हमारे मन को शांति देता है, कोई प्रेशर नहीं उसके ऊपर, कोई चिंता के कारण नहीं है। तो उस कल्चर को बनाए रखना भी हमारा ही काम है कि कोई बाहर का आदमी नया आके उसको बिगाड़ ना दे, कोई गलत चीज़ आके खा ना ले यहाँ पर, कोई गलत चीज़ ना करे छुप छुप के, कोई छुप छुप के मुंह में तम्बाकू रोक के काम ना करे, ये भी हमारा उत्तरदायित्व है। और साथ साथ में खुद भी ना करें और वातावरण को दूषित ना करें। एक वातावरण को बनाना है और बनाने के बाद उसको दूषित करना भी दूसरा काम है ना। जैसे कचरा आप साफ कर रहे हो हाउसकीपिंग के लोग, और कुछ लोग लगातार कचरा बना रहे हैं जोरदार, तो आप क्या बोलेंगे, अरे कचरा थोड़ा कम करो, हम तो साफ करेंगे, लेकिन आप कचरा इतना बनाते क्यों हो पहले, आप बोलेंगे ना। अभी आप साफ कर रहे हो और एक गंदा जूता लेके बीच में चला गया तो आपको अच्छा लगेगा, अभी तो मैंने साफ किया था पूरा लॉबी, और एक गंदा चप्पल लेके पूरा चल के गया तो पूरा उसका लाइन लग गया चप्पल का उसके ऊपर, और दोबारा आपने साफ किया तो तीसरा आदमी आया और गंदा करके चला गया, तो आपको लगेगा ना क्या चल क्या रहा है। उसी तरह से हमने पवित्र वातावरण बना के रखा है और एक आदमी आया उसने कुछ गलत काम किया, दूसरा आया वो गलत काम किया, फिर हमने कुछ साफ किया फिर गलत किया, तो इसलिए हमारा वो उत्तरदायित्व है। साफ सुथरे घर पे एक भी गलत पैर का छिक्का आया तो हमको खराब दिखता है, गंदे घर में 10 बार भी चप्पल लेके गए तो कोई समझेगा नहीं क्या है, इतना गंदा तो पहले से ही है। लेकिन सफेद रंग का कपड़ा पहना और एक उसमें साई का दाग गिर गया तो एकदम दिखाई पड़ेगा, देखो कितना बड़ा दाग है साई का। लेकिन जो गंदा कपड़ा पहन के आएगा पेंटर आदमी, हम जो पेंटर आपके घर पे आया उसके आपने एक साई का बूंद लगा दिया, कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं, इतना गंदगी में साई का डॉट कहाँ दिखेगा। तो वैसा ही है वो, हम सब लोग सफेद कपड़े पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हो वैसे, लेकिन मैं वैसे अलग दृष्टि से कह रहा हूँ, आपका वातावरण सफेद कपड़े की तरह स्वच्छ है यहाँ पर, उसके अंदर कोई भी दाग गिरेगा तो सबके ध्यान में आएगा, देखो दाग दिख रहा है, तो वो हो नहीं दाग, वो स्वच्छ रहे, इसलिए आप लोग उसको बनाए रखो। हमारे आने वाले साल जो है ना, बहुत भविष्य के साल जो है वो बड़े पवित्र साल है हमारे, हमारा भविष्य उज्ज्वल है बहुत, क्योंकि जहाँ पर भगवान की नींव होती है, जहाँ पर भगवान का सहारा होता है, जहाँ पर भगवान की सेवा होती है, वो जगह को कोई छू नहीं सकता है गलत चीज। गीता में लास्ट श्लोक क्या लिखा, एकदम लास्ट श्लोक, उस श्लोक में गीता खत्म हो जाती है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर श्री कृष्ण है और जहां पर उसके भक्त हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः, मतलब जो धनुष पकड़ के बैठे हुए हैं अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं, और जहां पर ये दो जगह दो व्यक्ति खड़े हैं, जिस जिस जगह पर आपको ये दो व्यक्ति मिलते हैं उस जगह पर क्या है, तत्र श्री धन दौलत वहां पर अच्छी प्रचुर मात्रा में होगी, तत्र श्री विजयो वहां पर हमेशा विजय होगी, नीतिर नीति वहां पर होगी, अच्छा व्यवहार होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। ये कौन बता रहा है, कृष्ण नहीं बोल रहे हैं इसको, संजय बोल रहे हैं और अपने स्वामी को बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र आपके पुत्र जो है वो पांडवों से युद्ध करने के लिए वहां पर गए हुए हैं, लेकिन हे स्वामी आपको ये जानना जरूरी है कि जिस पक्ष में अर्जुन और कृष्ण भगवान खड़े हैं उसी पक्ष में विजय है, उसी पक्ष में धन दौलत है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उन्नति है, उसी पक्ष में अच्छा व्यवहार है, सब कुछ उसी उधर ही है, आपके पक्ष में वो खड़े नहीं है, इसलिए आपका पक्ष का जो पराभव है वो निश्चित है। आपको लगता होगा मेरे पक्ष में भीष्म है, द्रोण है, बड़े बड़े योद्धा है, लेकिन हे स्वामी आपको पता होना चाहिए कि जिस पक्ष में कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं वही विजय होगी, वो बड़े कम संख्या में होंगे या छोटे छोटे योद्धा होंगे तो भी उनकी विजय होगी, इसको आप समझो। और हमको भी यही समझना है, अगर आपके जीवन में कृष्ण है तो आपकी विजय निश्चित है, और आपके जीवन में कृष्ण नहीं है तो आपकी पराजय निश्चित है, आपके जीवन में दुख आना निश्चित है, आपके जीवन में संकट आना निश्चित है। और संकट के समय आपको समझ में आया कि मैंने गलती किया और आपने कृष्ण का सहारा लिया, तो आप भी विजयी हो जाएंगे दुख होने पर भी। और भक्ति वेदांत का ये सबसे बड़ी भेंट है हमारे लिए, सबसे बड़ी भेंट। हम लोग योग्य होंगे नहीं होंगे कोई नहीं कह सकता, हम लोग क्या है भगवान ही जानते हैं। लेकिन कमजोर व्यक्ति भी जब बलवान व्यक्ति का सहारा लेता है तो वो बलवान लगने लगता है। एक छोटा उदाहरण दूंगा आपको जाने के पहले कि कैसे कमजोर व्यक्ति बलवान व्यक्ति का सहारा लेने पर बलवान बन जाता है। जब हम मीरा रोड में पहले आए थे ना, सबसे पहले तब हमारा यहाँ पर कुछ नहीं था, हम लोग ऐसे जगह देखने के लिए आए थे, कहा जगह मिलेगी तो दवाखाना खोलेंगे, यहाँ पर कैंप करके करके बहुत साल हो गए थे, अभी कुछ जगह चाहिए था जहाँ पर मरीज को भर्ती कर सके। तो जब मीरा रोड में उतरे तो हम लोग मील दूर तक कुछ नहीं, उधर ना बिल्डिंग है, ना बस स्टॉप है, ना रिक्शा है, पूरे मीरा रोड के स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी तो दो आदमी उतर गए, केवल दो आदमी। और मैं कल रात को 1 बजे उतरा तो 300 लोग उतरे 1 बजे रात को, वो दिन में मैं उतरा था 20 साल पहले तो 2 आदमी उतरे थे। वो समय पर हम लोग फ्लैट ढूंढने के लिए आए तो हमारा एक व्यक्ति मिला जिनका फ्लैट हमने खरीदा, और वो ब्रोकर भी था और खुद का ही फ्लैट बेच रहा था, तो हमने उसका फ्लैट लिया ग्राउंड फ्लोर में, किधर भक्ति वेदांत क्लिनिक है ना अपना, सेक्टर 5 शांतिनगर में। तो उसके घर पे एक छोटा कुत्ते का बिल्ला था, इतना सा था, छोटा सा एकदम बालक था। तो वो हमने उनसे बातचीत किया फ्लैट के बारे में, तय हो गया फ्लैट लेना है वगैरह वगैरह सब कुछ तय हो गया, कब आना है पैसे लेके, कब स्टैम्प ड्यूटी भरना है, कब रजिस्टर करना है, ऐसे बोलते बोलते फिर हम लोग निकले घर से। तो हमको वो छोड़ने के लिए गेट तक आया, बिल्डिंग के गेट तक आया, तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे उसके गेट तक आया। तो जब वो हम सब लोग गेट के पास आए, वो भी गेट के पास आया बाय बाय करने के लिए, और कुत्ता भी आया, तब रस्ते से कोई बड़े बड़े कुत्ते जा रहे थे ऐसे, तो रस्ते के बड़े बड़े कुत्ते उस छोटे कुत्ते पर भौंकने लगे। तो उस पिल्ले ने क्या किया मालूम है, वो अपने मालिक के 2 पैर के बीच में आया और खड़ा हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा उस बड़े कुत्तों पर। वो 4-4 बड़े बड़े कुत्ते थे, फुल बच्चे नहीं थे वो, ये छोटा सा पिल्ला था। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने मालिक के पैर में पहला अपना पोजीशन लिया, उसने पैर के बीच में आके फिर ऐसा भौंका उसके ऊपर, तो उसको भोगते हुए देखकर वो कुत्ते चले गए, भाग गए वो लोग 4 लोग। तो इसका मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है कि कमजोर आदमी ने मजबूत आदमी का सहारा लिया, तो वो 4 मजबूत कुत्ते थे वो भी डर गए और चले गए। वो अगर वो अकेला जाता था, अकेला भोगता था, तो उसको मार के खाते थे वो 4 लोग। यही बुद्धि का लक्षण है, हम लोग चाहे कमजोर होंगे कोई बात नहीं, मजबूत आदमी का सहारा लो। और वो मजबूत आदमी कौन है, बलशाली आदमी कौन है, वो श्री कृष्ण भगवान है, हमारे प्रिय भगवान। तो हम लोग तो अमी तो कंगाला, हम तो पतित हैं सब लोग, लेकिन सबसे पावरफुल आदमी का सहारा लिया है। इसलिए वो जो हम कौन है, वो छोटे कुत्ते के पिल्ले की तरह है। वो मालिक कौन है, वो कृष्ण है, और वो भोगने वाले कुत्ते कौन है, माया देवी है। तो जब हम लोग, वो बालक चिल्ला रहा है तो माया देवी भाग रही है, उसके पास खड़े होने का शक्ति नहीं है। लेकिन मालिक को माइनस कर दो तो क्या होगा, वो माया देवी आके पूरा झपट लेगी आपको। हाँ, निकटस्थ माया तरी झपटिया धोरे, एकदम पकड़ लेगी आपको, कुछ नहीं कर सकते आप। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, कृष्ण को छोड़कर जीने जिएंगे तो निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे, और कृष्ण को पकड़ के रखेंगे तो दूर तक माया नहीं आएगी, आपको देखेगी अरे बाप रे बड़े पावरफुल आदमी का सहारा लिया है इसने, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भोगूंगी नहीं और कुछ नहीं करूंगी, दूर से ही चलते बनेंगे वो लोग। तो भक्ति विधान का जो यश का रहस्य है वो यही है कि सब लोगों को सबसे बलशाली व्यक्ति श्री कृष्ण का सहारा लेने का मौका यहां मिल रहा है, चांस मिल रहा है कि यहां पर आप लोगों को सबसे पावरफुल व्यक्ति का सहारा लेने का मौका मिल रहा है। जो आदमी सहारा लेता है वो जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, और जो यहां पर रह के भी उसका सहारा नहीं लेता है वो वैसे ही रहता है जैसे पहला था। वैसे रोते रहेगा, वैसे कंप्लेंट करते रहेगा और जीवन में एक संकट का सामना नहीं कर पाएगा। यहां पर जो भी आता है वो भाग्यशाली जीव है, क्योंकि पहले कुछ उसने पुण्य कर्म किए इसलिए भगवान ने उसको यहां भेजा है, क्योंकि यहां पर उस पावरफुल व्यक्ति का सहारा मिल रहा है, कनेक्शन यहां मिल रहा है। हम बोलते हैं ना कि अरे बीच में बांद्रा में गए तो कनेक्शन खत्म हो गया, रेंज नहीं आ रहा है, फिर दादर पहुंचे तो वापस रेंज आ गया, फिर बात हो सकती है। बांद्रा में बात कट हो गई, बात करते करते कट हो गई, आधा घंटा बात ही नहीं हुई, गाड़ी बांद्रा में रुकी थी तो उधर कनेक्शन था ही नहीं, पब्लिक एरिया था उधर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, अरे नाएगा रेंज नहीं मिलता है, तुम थोड़ा बार नहीं ऐसे ही बोल रहा, दादरला उतर तो ऐसे बोलते तिकट रेंज मिले रेंज मिले तिकट रेंज मिले, ऐसा बोलते ना हम लोग। वैसा ही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल रेंज है भगवान से कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पर कनेक्शन नहीं करेंगे, समझो यहाँ पर आप लोग मोबाइल आपको बहुत अच्छी रेंज मिल रही है, आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो गया, रेंज भी है सब कुछ है लेकिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ है तो क्या करेंगे आप, बात नहीं कर सकते, आपको खोलना पड़ेगा उसको, मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। तो पावरफुल रेंज के अंदर कम से कम बैटरी खर्च होगी आपकी और ज़्यादा बात होगी आपकी, होता है ना ऐसे, सबको सब मालूम है, आप सब जानते हो, सब लोग होशियार होगा आप। उसी तरह से जहां पर भगवान का कनेक्शन बहुत पावरफुल तरीके से आपको मिल रहा है वहां पर अपने आप को स्विच ऑन रखो और जोड़ दो तो फिर आपको पूरा लाभ मिलेगा उसका। और यहां पर आने के बाद भी आप घर जाके शराब पियोगे, मांस खाओगे, नशा करोगे तो फिर क्या मिला, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, डिस्चार्ज हो गया और स्विच ऑफ भी हो गया, क्या कर सकते हैं, रेंज तो बहुत है लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है, अपने मोबाइल को ऑन करो और यहाँ का जो रेंज है उसका पूरा लाभ लो। हाँ भगवान की रेंज है, हाँ रिलायंस की वोडाफोन की रेंज नहीं है आप, पर भगवान की रेंज है। इस भगवान की रेंज को आपको अपने आप को जोड़ लो और उसको पूरा लाभ लो। पता नहीं आपके कर्म आपको किस दिन यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाएंगे, हु नोज, कर्मों का खेल किसने देखा है। हमको लगेगा क्या बोर हो रहा है बहुत यार, परेशान हो गया यहाँ पर, कहीं जाना चाहिए, बहुत हो गया अभी, वो कर्मों का खेल है सब। अपने कर्म ऐसे होंगे तो भगवान आपको कुछ दिन के बाद में ले जाएंगे यहाँ पर कहीं, क्या पता किसकी शादी होगी, किसका ट्रांसफर होगा, किसी का हस्बैंड का बदली होगा, वो व्हाट क्या कर सकते हैं आप। लेकिन जितना दिन आपको यहाँ पर समय मिला वो आपके पिछले जन्मों के कोई बड़े पुण्य का परिणाम है, इसलिए आपको यहाँ पर कनेक्शन मिला और वो संपर्क हुआ आपका, उसमें पूरा लाभ जितने लिया। आप लोग अमेरिका गए समझो, दो साल नौकरी करने गए तो आप क्या बोलेंगे, अरे जितना हो सके उतना कमा लो अभी एक ही बार, तो आपको अधिक आप पूंजी जमा कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। और वहां पर गए और जितना कमाया उड़ा दिया हवा में, एकदम पूरा खाना पीना खा के उड़ा दिया, दो साल काम कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हाथ में क्या है, नो बैलेंस, तो हो गई ना मूर्खता। चांस तो बहुत था आपको, बहुत सारा कमा के सेव करके बॉम्बे में लेके आने का, फिर यहाँ पर बंगला बना सकते आप, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। उसी तरह से कुछ समय के लिए आपको भगवान ने आपको समय के लिए यहाँ पर नौकरी दिया, काम दिया, कुछ भी दिया, उतने में आपने अगर पूरा लाभ उठाया भगवान के भक्ति का तो आप जहाँ पर भी बाद में जाएंगे वहाँ पर भी आपको उसका लाभ होगा। जैसे हम लोग हमारे नर्सरी लोगों को बोलते हैं हमेशा उनके सेंड ऑफ के अंदर कि आप ऐसे बाग के फूल हो कि आपका फूल आप ऐसे बाग के फूल हो कि आप बाग से निकल कर कहीं और भी जाएंगे तो लोगों को उसकी खुशबू मिलती रहती है और मिलनी भी चाहिए। क्या बोलेंगे, कहाँ का फूल है, बोले भक्ति वेदांत के बगीचे का फूल है। वो दादर में भी जाएगा तो उधर खुशबू वही देगा जो भक्ति वेदांत ने देता है ना, वो खुशबू वहां पर भी देगा। लेकिन आप खिलो ही नहीं यहाँ पर, हाँ कल ही रह गए, खिलने के पहले गिर गए तो कैसा खुशबू आएगा, नहीं आएगा। कली के बाद में खुल गए आप, फूल बन गए तो वो फूल से खुशबू आएगी और वो फूल जहां पर भी जाएगा वो खुशबू देते रहेगा, जेब में रखो या पॉकेट में रखो कहीं भी रखो खुशबू आती रहेगी। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भक्ति विधान में हो, यहाँ पर संतों का दर्शन होता है, संग होता है, उपदेश मिलता है भगवान की कृपा से, उसका पूरा लाभ लो। नौकरी तो आप कर ही रहो, करते रहो, साथ साथ में जितना समय यहाँ मिल रहा है उसका पूरा भजन का लाभ जो है ले लो। इसलिए ऑन ड्यूटी सत्संग बना के रखा है ताकि आप ड्यूटी पर होते हुए भी सत्संग कर सकते हो और जीवन का जो उद्देश्य है उसको समझ सकते हो कि हम लोग क्यों यहाँ पर हैं, इंसान बन के क्या मतलब है हमारे ज़िंदगी का। और इंसान बनकर अगर हमने भजन नहीं किया तो हमारे एवं जानवर में अंतर क्या है, हाँ जीवन प्लस भगवान की भक्ति, इसका मतलब मनुष्य का जीवन। और जीवन माइनस भगवान की भक्ति, इसका मतलब जानवर का जीवन। तो मनुष्य के जीवन से अगर भगवान की भक्ति को माइनस कर दिया तो क्या बचा? जानवर का जीवन। तो आपको तय करना है, भगवान ने आपको तो मनुष्य बना दिया है, अभी मनुष्य सही में बनना है आपको, तो भगवान से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। वो कनेक्शन होगा तो आप मनुष्य बने रहेंगे और भक्त भी बनेंगे आगे जाकर। और वो मिलकर भी आपने नहीं लिया तो मनुष्य होते हुए आप जानवर बन जाओगे। इसलिए अपने भाग्य को मत ठुकराओ, अपने हाथ से, अपने पैर से मत ठुकराना। हमारे हाथों से और हमारे बुद्धि से हमको हमारे अपने भाग्य को उद्धार करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उसके लिए पढ़े लिखने की जरूरत नहीं है, गरीब होने पर भी आप जोड़ सकते हो अपने आप को। हाँ, सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे